प्रिय मित्रों नमस्कार। आज सितंबर 2016 का पहला दिन है, यानी कि फर्स्ट सितंबर 2016। और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं शालिनी मिश्रा, आप संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हैं। परेश बलाई, आप बुलगरतूर राजस्थान से हैं। हो सकता है कि उच्चारण करने में कुछ दिक्कत हो रही हो दोस्तों, जब बिल्कुल नया स्थान आता है और रोमन लिपि से जब आपको हिंदी में उसको बोलना पड़ता है तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। तो दूसरे साथी हैं परेश बलाई और तीसरे मित्र हैं अंजलि सिंह जो बिहार से हैं। तो शालिनी, परेश और अंजलि, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों एक बात मैं बता दूं कि मेरा गला कुछ जरूरत से कुछ लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही खराब है। कोशिश में हूं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और बोलते समय भी नियंत्रण रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस तरह का डिस्टर्बेंस आप बीच बीच में महसूस करेंगे तो उसके लिए जरा सा मुझे बियर करें, माफ करके चले। तो मित्रों आज सितंबर का पहला दिन है और 25 सितंबर को फिफ्थ बैच के स्टूडेंट और मैं हम सभी आमने सामने होंगे, यानी कि अब उस महीने की शुरुआत हो चुकी है जिस महीने में ही हम सभी की मुलाकात होगी। मित्रों हमारी एकेडमी की पूरी टीम जिसमें मैं भी शामिल हूं बहुत व्यग्रता से और बहुत उत्सुकता से हम सब आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप सबकी प्रतीक्षा आने के संबंध में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन सब में लगे हुए भी हैं। मित्रों यहां मेरा जो अनुरोध आप सबसे है, उन स्टूडेंट से जो फिफ्थ बैच में आने वाले हैं, प्लीज आप भी अपनी तैयारियों में लग जाइए। अपनी तैयारियों में लग जाइए का मतलब नहीं कि अभी से आप अपनी अटैची लगा लीजिए, वो तो एक बहुत ही छोटा सा काम है। तैयारी में लग जाइए का मेरा मतलब होता है कि अब मानसिक रूप से आप अपने को और भी अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बढ़ते चले जाइए। हालांकि यह बात मैं हर उस स्टूडेंट से कहता हूं कि जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन कराता है एक प्रकार से कहीं न कहीं वो एकेडमी का एक फॉर्मल स्टूडेंट तो हो ही जाता है, मतलब एक कमिटमेंट तो उसका हो ही जाता है कि वो एकेडमी की क्लासेस में आने वाला है। लेकिन मित्रों फीस जमा करने के बाद, एडमिशन फॉर्म भरने के बाद डेफिनेटली आप एक तरह से फॉर्मल स्टूडेंट हो चुके होते हैं। पहले ये कमिटमेंट होता है और इस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते आप फॉर्मल स्टूडेंट हो चुके होते हैं। मित्रों मैं उसी समय रजिस्ट्रेशन के समय से ही स्टूडेंट से ये कहना शुरू करता हूं कि प्लीज अब चूंकि आप फॉर्मल स्टूडेंट हो गए हैं एकेडमी के तो अपनी मानसिक स्थिति पर खासकर ध्यान दीजिए, अपने विचार पर, अपने व्यवहार पर, आचरण पर, अपनी सारी चीजों पर, ताकि आप में एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए। जैसा कि मित्रों मैं बार बार कहता हूं कि ये जो 15 दिन की क्लासेस हैं ये मूलतः बदलाव की क्लासेस हैं, लेकिन याद रखिए उस तरह का बदलाव नहीं है कि किसी कमरे की चीजों को उठा करके इधर से उधर रख दिया गया और कमरे में बदलाव आ जाएगा। ये बदलाव आपको खुद ही करना होगा, बाहरी कोई आदमी बदलाव नहीं कर सकता, आपकी मदद कर सकता है। और एकेडमी इन 15 दिनों में सच पूछिए तो उसी बदलाव के लिए आपकी मदद करेगी और ये बदलाव आपको हर जगह दिखाई देगा, मैनेजमेंट से लेकर के टीचिंग क्लासेस तक। हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों पर बहुत बारीकी से नजर रखें, उन्हें बहुत सोच समझ कर व्यवस्था दी गई है ताकि उन सब चीजों का सम्मिलित प्रभाव आपकी चेतना पर और आपके व्यक्तित्व पर कुछ इस तरीके से पड़े कि आप में जो बदलाव की प्रक्रिया है वो तेज हो जाए। तो मित्रों आप सब इसी तरह की मानसिकता को धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। बीच बीच में मैं आप लोगों से और बातचीत करता रहूंगा कि आप लोगों को और क्या क्या करना है, लेकिन फिलहाल आज जो मैं आपसे 1 सितंबर को अर्ज करना चाह रहा हूं वह यह कि आप सब अपने अंदर अपने उद्देश्य के प्रति कमिटमेंट और समर्पण भाव, इन दोनों को धीरे धीरे लाना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपके अंदर कमिटमेंट बढ़ती चली जाएगी और समर्पण भाव बढ़ता चला जाएगा, आप देखेंगे कि आप अपने अंदर एक खालीपन का एहसास करने लगेंगे। आप अंदर से खाली होते चले जाएंगे और आप जितना ज्यादा खाली होकर आएंगे, बट नेचुरल है कि उतनी ज्यादा जगह आपके अंदर होगी और आपके अंदर जितनी ज्यादा जगह होगी उतनी ज्यादा आप यहां से लेकर जा सकेंगे। बिल्कुल सीधा साधा गणित है। तो मित्रों, आज 1 सितंबर को मैं अपने सभी 5th बैच के स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और खासकर ये स्वागत मैं कर रहा हूं सितंबर महीने के आगमन के साथ ही, क्योंकि यह सितंबर महीना ही हम लोगों की मुलाकात की एक डेट हमें प्रदान करेगा। मित्रों, अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज पर। आप लोगों ने न्यूज सुनी है, 4-5 ऐसी खबरें हैं जिन पर मैं इशारे के तौर पर ही बात करना चाहूंगा। बहुत विस्तार से जाने की जरूरत मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें हैं। मित्रों, यहां मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि जैसे मैं कहता हूं कि ये छोटी छोटी बातें ही है, इस पर विस्तार से बात करने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब क्या होता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे इस कहने का अर्थ स्टूडेंट इस रूप में न लगा लें कि ये तो इग्नोर करने वाली चीज है, फालतू की चीज है, या कह लीजिए कि खाना पूर्ति की चीज है, तो इसे हम अगर नहीं भी सुनेंगे, नहीं भी ध्यान देंगे, नहीं भी याद रखेंगे तो कोई खास बात नहीं है। मित्रों, ये मान करके चलिए कि अगर मैं डेली ऑडियो गाइडेंस में किसी भी इशू पर बात कर रहा हूं, चाहे वह छोटा इशू ही क्यों ना हो, और बात करने में बहुत कम वक्त ही क्यों न ले रहा हो, मान लीजिए कि मैं उसका यूं ही उल्लेख भर कर रहा हूं, तो मानकर चलिए आप कि उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। मैं वैसे ही उल्लेख नहीं कर रहा हूं, मतलब आप लोग कभी ये न माने कि मुझे चूंकि ये 30-32 मिनट का समय पूरा करना है, तो मैं इसकी भरपाई करने के लिए कुछ भी लाकर आपके सामने रखता जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों, ये 30-32 मिनट में बात करने के लिए मेरे पास बहुत सी चीजें हैं। मैं तो उस दिन की भी कल्पना करता हूं, मान लीजिए कि जिस दिन AIR न्यूज में बातचीत करने के लिए कोई भी न्यूज नहीं होगी, अखबार की एक क्लिपिंग्स भी नहीं होगी जो मैं आपको रीडिंग पर स्टडी के लिए प्रोवाइड कर सकूं, इसके बावजूद मेरे पास आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ होगा, और एक दिन के लिए नहीं, ये कई कई दिन के लिए होगा। इसलिए बात करने के लिए मेरे पास जितना कुछ है वो इतना ज्यादा है कि मुझे AIR न्यूज और सच पूछिए न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग की जरूरत नहीं है। मतलब इनके बैसाखियों पर ही मैं ये 30-32 मिनट का डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं। हां, चूंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इनफैक्ट सच पूछे तो हमारे दो पैर ही हैं, बैसाखी नहीं कहना चाहिए, हमारे दो पैर ही हैं, इन्हीं पर हम खड़े हैं, पूरा का पूरा जो आपके सिविल सर्विस के जनरल स्टडीज का जो ढांचा है इन्हीं पर खड़ा है, तो स्वाभाविक है कि हम चीजें तो वहीं से लेंगे, लेकिन यदि वहां कुछ कम पड़ता है तो हमारे पास दूसरी चीजें बहुत सारी हैं। इसलिए मित्रों, जब मैं छोटी बात भी कहता हूं तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, और हो सकता है कि मेरे इस वक्तव्य को आप मेरी गुस्ताखी माने कि यदि मैं कहूं कि जिस दिन आपको महत्वपूर्ण लगता है कोई टॉपिक या पूरा का पूरा डेली ऑडियो गाइडेंस या न्यूज वाला कोई भी हिस्सा, तो आपको चाहिए कि आप उसे दोबारा सुन ले, तिबारा सुन ले। ऐसा नहीं है कि कोई बाध्यता है कि सिर्फ एक ही बार सुनेंगे, जैसे कि एक बार टिकट खरीदने के बाद उस ट्रेन में आप एक ही बार सफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला कीजिए कि आपके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, और आप उतनी बार उसे सुनिए, क्योंकि आपको तैयारी करनी है, आपको केवल फॉर्मेलिटी एक बार डेली ऑडियो गाइडेंस सुनने की फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है। मित्रों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि हम सबका जो दिमाग है वो किस फॉर्मेट में काम करता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, तो हो सकता है कि आप में से बहुतों के दिमाग में ये बात बनी हुई कि हो कि एक बार सुन लिया तो बस बहुत है, तो उस धारणा को तोड़ने के लिए मैं स्पेशली ये बात कह रहा हूं। इसलिए मित्रों, आज मैं अगर ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज में से, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, तो आप इसे इस रूप में बिल्कुल भी न लें कि ये इतनी छोटी चीजें हैं कि अगर आप नहीं भी सुनेंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि जो सिविल सर्विस के जो आप आंसर लिखेंगे, तो अब आपको मैं बता चुका हूं और आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि बने बनाए आंसर का युग खत्म हो गया है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, अब आप क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा, यही करेंगे कि आप आंसर बनाएंगे। अब सवाल है कि आंसर कैसे बनाएंगे, बस इसी तरीके से बनाएंगे, छोटी छोटी चीजें जो कहीं सुनी हैं, कहीं पढ़ी हैं, कभी सोची हैं, बस उनको इकट्ठा करके और जोड़ देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का भी आपके लिए बड़ी बड़ी चीजों जितना ही इंपॉर्टेंस है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब मैं कुछ न्यूज पर आता हूं। एक खबर आपने पढ़ी जो टाटा की जो नैनो कार है, आपको मालूम होगा कि इसके लिए कार सबसे पहले वेस्ट बंगाल में इसका प्रोजेक्ट लगना था और इसके लिए नैनो को जमीन भी अलॉट कर दी गई थी। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। इसके बाद फिर उस समय ममता जी चीफ मिनिस्टर नहीं थी, वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, बुद्ध देवदास जी वहां के मुख्यमंत्री थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जो लंबे समय से 37-35 साल से लगातार उसी पार्टी की सरकार बनती आ रही थी। फिर ममता जी ने वहां जो जमीन एक्वायर की गई थी किसानों की, तो उसके खिलाफ एक तरीके से आंदोलन छेड़ा किसानों को लेकर के, और उसका नतीजा ये हुआ कि चूंकि राज्य सरकार ने तो नैनो प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी थी, क्योंकि उसका कारण यह था मित्रों कि किसी समय में कलकत्ता हमारे देश की औद्योगिक नगरी थी, जैसे आज बॉम्बे औद्योगिक नगरी है, शुरू में कलकत्ता औद्योगिक नगरी हुआ करती थी। इसके बाद जैसे वहां से कम्युनिस्ट की सरकार आई, तो कम्युनिस्ट की सरकार जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी होती है आप जानते हैं कि उसमें मजदूरों का या सर्वहारा वर्ग की बात ज्यादा की जाती है, तो मजदूरों के संगठन बने, फिर वो अपने अधिकारों की बात करने लगे, हड़ताल होने लगी, तालाबंदी होने लगी, तो इससे उद्योगपतियों को काफी दिक्कत होने लगी और धीरे धीरे फिर वेस्ट बंगाल डी इंडस्ट्रियलाइज्ड होने लगा, वहां से लोग अपने अपने उद्योगों को बाहर ले जाने लगे। तो जब उद्योगी खत्म हो जाएंगे तो किसी स्टेट का क्या डेवलपमेंट होगा, आप समझ सकते हैं। और फिर एक ऐसा स्टेट जो शुरू से ही एक औद्योगिक राज्य रहा है, तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने थोड़ी सी अपनी नीतियों में परिवर्तन किया, या यूं कह लीजिए कि पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल गई थी 1991 के उदारीकरण के बाद। तो उससे हुआ यह कि नैनो प्रोजेक्ट दे दिया गया कि कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, औद्योगिक विकास की शुरुआत हो जाएगी फिर से। तो ममता जी ने आंदोलन किया और नतीजा यह हुआ कि फिर फेडअप होकर के जो हमारे टाटा जी थे, रतन टाटा जी, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अपना प्रोजेक्ट यहां से बंद कर रहे हैं। उसी समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप आ जाइए और हम आपको तुरंत जमीन देते हैं। और उस समय 2-3 दिन के अंदर अंदर उनको जमीन अलॉट भी कर दी गई, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। अब ये नैनो कार जो है ना, वो गुजरात में बन रही है। अब सवाल यह था कि ये जो जमीन अलॉट की गई थी ये तो टाटा के पास ही थी, तो ये कहा जाता है कि इसके बाद जब चुनाव हुए वेस्ट बंगाल में, तो इससे ममता बनर्जी इतनी पॉपुलर हुई कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो है स्टेट इलेक्शन में जीत करके आ गई और वो चीफ मिनिस्टर बनी। और आप देख रहे हैं कि दोबारा भी अभी कुछ समय पहले ही चीफ मिनिस्टर बनी है, उनका सेकेंड टर्म है। तो ये माना जाता है कि उनकी जो सफलता का जो सबसे बड़ा कारण था, जिसने उनको जंप दिया पॉलिटिकली, वो एक तरह से सिंगूर में उनके द्वारा किया गया वो किसानों के साथ मिलकर आंदोलन ही था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्वायर की गई थी जमीन, उसको गलत माना है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। केवल इस पॉइंट पर मैं बैकग्राउंड आपको जानबूझ करके बता रहा था, ताकि आपको थोड़ी सी इन चीजों से ना एक स्पष्टता आ जाती है। अब आप देखें कि इसमें मामला क्या बनता है। मित्रों, जब से लिबरलाइजेशन का दौर चला है, तो आप देखेंगे कि एक बात आपको अक्सर अखबारों में कभी कभी पढ़ने को मिल जाती होगी, जब लैंड एक्वायरमेंट की बात आती है, जमीन भूमि अधिग्रहण की बात आती है, और आप देख रहे हैं कि उसको लेकर के जो बिल भी आया था उसको कितना जबरदस्त उसका विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, और आज भी वो मामला कोई बहुत ज्यादा सुलझा नहीं है। ये कहा जाने लगा कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, इनके फेवर में है सरकार, सरकार इन्हीं की है, ये भी आरोप लगाया जाता है, जिसमें दोस्ताना पूंजीवाद की बात कही जाती है, और ये किसी भी औने पौने दाम पर लोगों की जमीन ले लेती है, किसानों की जमीन ले लेती है और इन उद्योगपतियों को दे देती है, उनको फायदा पहुंचाती है अपने राजनीतिक हित के लिए, ये भी बात कही जाती है। फिर वो अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया और फिर उसमें कांग्रेस के समय में आया और वो इतना कुछ टफ हो गया कि भूमि अधिग्रहित करना ही मुश्किल हो गया। तो जब भूमि अधिग्रहित करना मुश्किल हुआ तो फिर अलग तरीके के संकट पैदा होने लगे, उद्योगों के लिए जमीन नहीं मिल रही है, विकास के लिए जमीन नहीं मिल रही है, इस तरह के फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो मित्रों, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है, ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसको एक तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में दिया गया, आप एक डिसीजन मान सकते हैं। हालांकि सीधे सीधे कोई व्यवस्था के विरोध में नहीं है, ये कानून के विरोध में, मतलब कि कानून का पालन नहीं किया गया है। लेकिन ये एक फेवरेबल इस मायने में है जनता की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से, कि डेफिनेटली इसका प्रभाव यह होगा कि बहुत आसानी से किसानों की जमीन अधिग्रहित नहीं की जा सकेगी, इस पर रोक लगेगी, लोग थोड़े से सतर्क होंगे। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी उद्योगपति को जमीन देती है तो फिर वो रूल्स रेगुलेशन को अच्छी तरह फॉलो करने की कोशिश करेगी। तो इस प्रकार आप इस मामले को भूमि अधिग्रहण की समस्या से जोड़ करके देख सकते हैं, देश के विकास से भी जोड़कर देख सकते हैं, किसानों के हित से भी जोड़कर देख सकते हैं, और यहां तक कि जो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उससे भी जोड़कर देख सकते हैं। तो घटना एक है जिसे आप तीन चार तरह के प्रश्नों में जिसका उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद एक जो खबर थी वो हम लोगों ने कल उस पर काफी बात भी की है, भारत अमेरिका के सामरिक संबंधों को लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है कि पिछले दो सालों में जो सामरिक संबंधों में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है, और खासकर वो जो लेमोवा जो समझौता हुआ है परसों, उसको लेकर के वो बात कही गई है, और इस पर हम लोगों ने काफी चर्चाएं भी की हैं, और मैंने कुछ आपको एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड किए थे। आज भी मैं कुछ एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने कल चैनल्स पर देखा हो तो दूरदर्शन में तो इस पर काफी बात भी हुई थी, जिसमें हमारे दो पूर्व राजदूत एम्बेसडर जो रहे हैं उनसे डिस्कशन किया जा रहा था। तो इसी से सिद्ध होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जो इसके बारे में मैं कल बता चुका हूं। तो ये एक दूसरी खबर थी। तीसरी जो एक इंपॉर्टेंट खबर मुझे छोटी सी लगती है दोस्तों, की जो राष्ट्रीय जो हमारा एक तंत्र है राजमार्ग परिवहन मंत्रालय, उसने एक अच्छा कदम उठाया है, बड़ा व्यावहारिक कदम, कि जो ई रिक्शा और जो ई गाड़ियां होंगी, इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो गाड़ियां होंगी, इनको परमिट से मुक्त कर दिया गया है। तो इसको आप पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से एक अच्छा कदम मान सकते हैं कि फिर जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे हैं, शायद इससे लोगों को इनका उपयोग करने का प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले, और जितनी ज्यादा ये ई व्हीकल्स सड़कों पर आएंगी पर्यावरण प्रदूषण में उतनी ज्यादा सफलता, पर्यावरण को प्रदूषित मुक्त करने में उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। तो ये एक छोटा सा कंटेंट है पर्यावरण की दृष्टि से, तो ये अपडेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार क्या नीतियां लेकर के आ रही है, तो ये सरकार की नीतियों का एक हिस्सा है कि उसको परमिट मुक्त कर देना। इसके बाद एक कैबिनेट डिसीजन है मित्रों, छोटा सा कैबिनेट डिसीजन है कि जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए, देखिए ये एफडीआई की हम अक्सर बात करते हैं और भारत और दुनिया के दूसरे देश भी इस बात इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें विदेशी निवेशक उनके यहां निवेश करें। तो उस लिहाज से भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए उनके फेवर में एक कदम उठाया कि यदि वो भारत में स्थायी निवास करना चाहेंगे तो उन्हें इसकी स्वीकृति दी जाएगी, इसकी अनुमति दी जाएगी। तो ये एक छोटी सी खबर, ये भी मैं समझता हूं कि है, जिसका आप उपयोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मित्रों, एआईआर न्यूज में बस इतना ही है। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर, और आज न्यूज़पेपर्स की काफी क्लिपिंग्स हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिपिंग्स हैं दोस्तों, इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत ही डिटेल में बात कर सकूं, वो है खासकर हमारा जो अर्बन सिस्टम है उसको लेकर के, शहरों की व्यवस्था को लेकर। आप देख रहे हैं कि अभी बारिश हो रही है और उससे जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली जैसी जो राजधानी है, वो तक जाम हो जा रही है, ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, घरों में पानी घुस रहा है, और ये अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय इस मायने में बन गया कि जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं जॉन कैरी साहब आए हुए थे, तो उनके कई प्रोग्राम सिर्फ इसलिए कैंसिल करने पड़े क्योंकि वर्षा के कारण ट्रैफिक जाम था, वो नहीं पहुंच सकते थे। और यहां तक कि जो आईआईटी दिल्ली में भी पहुंचे तो वहां लगभग पौन घंटे देरी से ही पहुंच पाए, और फिर उन्होंने व्यंग्यात्मक उक्ति भी की वहां के लड़कों से, उन्होंने कहा कि भैया क्या आप सब यहां नाव से आए हुए हो, मतलब वो पहले से आकर के बैठे हुए थे, तो आप कैसे टाइम पर पहुंच गए। खैर, अब हुआ यह कि इसी बात ने एक तरीके से अब इसको चर्चा के केंद्र में ला दिया है कि हमारे जो सिटी जो प्लान है और सिटी जो मैनेजमेंट है वो क्या है और उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। मित्रों, इस पर आपको बहुत अच्छे से तैयारी आपकी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, चर्चा में आने का कारण तो ये जॉन केरी वाली घटना बन गई। हालांकि जाम तो पहले भी लगता था, बारिश होती थी, दीवारें गिरती थी, लोगों की मृत्यु होती थी, इस तरह की घटनाएं हर साल हो रही है, लेकिन चूंकि इस बार अमेरिका के विदेश मंत्री से वो घटना जुड़ गई है तो मुझे एग्जामिनेशन के लिहाज से थोड़ा सा महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। फिर आप देखेंगे कि इसके साथ ही साथ में दो तीन और इश्यू जुड़े हुए हैं, जैसे एक स्मार्ट सिटी। ये जो बने बनाए सिटी हैं, हम इनको नहीं बचा पा रहे हैं, स्मार्ट सिटी क्या लेकर के आएंगे, एक प्रश्न खड़ा होता है। फिर हमको स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। अब जो शहरों में जो पानी जो रुक रहा है उसके पीछे बहुत सी यही कारण है, स्वच्छ भारत से जुड़े हुए, कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, कचरा उन ड्रेनेज में फंसा हुआ है, कुछ सिस्टम ही नहीं है। और यहां तक कि जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जो पानी के बहने की जगह होना चाहिए, वहां या तो भूमि माफियाओं ने अपने कुछ मकान बना लिए हैं, उन पर कब्जा कर लिया है, उन पर बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो पानी को अपना निकास नहीं मिल पा रहा है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। इसमें असल में दो तीन मामले होते हैं जब हम सिटी प्लान को लेकर के देखते हैं मित्रों। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। दूसरा जो मामला होता है इसका, वो है एडमिनिस्ट्रेशन का मामला। 74th अमेंडमेंट आया है और 74th अमेंडमेंट के तहत जो अर्बन जो हमारी बॉडीज हैं उनको काफी फ्रीडम दी गई है, काफी स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिए गए हैं। लेकिन भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी भी हमारा जो सिस्टम है शहरी प्रणाली का, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक इन द सेंस, अगर आप दुनिया के बड़े बड़े डेवलप्ड जो शहर हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, आप अक्सर अखबारों में पढ़ने को आपको मिल भी जाता होगा कि वहां मेयर जो होता है वो, आप मान लीजिए कि उस शहर का चीफ मिनिस्टर है, वो सारी शक्तियां उसके पास है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल पावर्स हो, और वही उसके लिए अकाउंटेबल भी है, जिम्मेदार भी वही है। तो चूंकि सारी चीजें उसके पास है, उस शक्तियां हैं, और उसके पास लोगों की ताकत है क्योंकि लोगों ने मेयर उसे चुना है, तो वो इतने डेमोक्रेटिक तरीके से वो इलेक्ट होता है और उसके पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वहां के शहरों के निदान के लिए लोग मेयर को जिम्मेदार ठहराते हैं और फिर मेयर वो सब कुछ करता है। हमारे यहां सिस्टम नहीं है। हालांकि ठीक है, चुनाव होते हैं, पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, सारे होते हैं, लेकिन उनके पास वो अधिकार नहीं है। हमारे यहां अधिकार ब्यूरोक्रेट्स के पास है, जिसे आप नगर निगम कमिश्नर कहते हैं। और आप अक्सर अपने शहरों में पढ़ते होंगे कि नगर निगम कमिश्नर और मेयर के बीच में कुछ विवाद चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो इसका नतीजा शहर भुगतता है। तो मित्रों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको लेकर के दो बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट्स है मेरे पास, एक है इकोनॉमिक टाइम्स का और दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये दोनों कमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट भी कर लीजिएगा। एक एडिटोरियल कमेंट मैं जनसत्ता का उपलब्ध करा रहा हूं मित्रों, जो खासकर भारत और म्यांमार को लेकर है। मैंने आपसे चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने फिर मैप में म्यांमार को ढूंढने की कोशिश की है। इसी में मेंशन किया हुआ है इस एडिटोरियल कमेंट में कि नागालैंड और मणिपुर से जो भारत की म्यांमार से जो बॉर्डर मिलती है वो लगभग 1650 किलोमीटर लंबी, आप समझ सकते हैं। और मणिपुर और नागालैंड वो दो वैसे हमारे स्टेट हैं जहां पर इस एक तरीके से आतंकवाद, इस तरह की उग्रवादी गतिविधियां होती रहती हैं। तो भारत शुरू से कहता रहा है कि शायद म्यांमार में इनके अड्डे हैं, तो उस समय तो सैन्य शासन था तो उतनी सुनता नहीं था म्यांमार, लेकिन अब चूंकि वहां एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया है तो उम्मीद की जा रही है कि अब इस तरह के उग्रवादी गतिविधियों पर थोड़ा सा नियंत्रण लगेगा। तो इसको लेकर के एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, क्योंकि म्यांमार में बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ बहुत हैं, प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं जो भारत के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। चूंकि पड़ोसी राष्ट्र, मैं आपको बता चुका हूं, तो म्यांमार के टॉपिक पर आपका ध्यान रहना चाहिए। मित्रों, इसके अतिरिक्त और भी बहुत से क्लिपिंग्स हैं, आज क्लिपिंग्स की संख्या कम नहीं है, आपका काफी समय ये क्लिपिंग्स एंगेज कर लेंगी, उन पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग उसे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। मित्रों, कल के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने जो अमित के पिता के निधन के संदर्भ में जो आप लोगों से बात की थी, उस पर आप लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं मिली हैं और आप लोगों ने उस टॉपिक को न केवल काफी पसंद ही किया बल्कि इस बहुत उपयोगी भी पाया, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोगों के कई मेल मुझे ऐसे मिले हैं जिसमें जिससे ये पता लगता है कि उस पर आप लोगों का प्रभाव भी पड़ा है, और डेफिनेटली अगर प्रभाव पड़ा है तो वह आप लोगों के आचरण में देर सवेर आएगा ही। मित्रों, मैं इसी टॉपिक को, कुछ स्टूडेंट्स ने यह बात कही कि इससे थोड़ा सा और आगे आप बढ़ाएं, तो आज मैं उसी बात को कंटिन्यू करते हुए थोड़ी सी और कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगा। मित्रों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ज्यादातर पेरेंट्स के साथ जो हमारे रिलेशन होते हैं उस रूप में तो बेहतर होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, लगाव होता है। देखिए, ये मान करके चलिए कि जो पेरेंट्स हैं वे अपने संतान से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं, वह उनका हित ही चाहते हैं, ये तो आप विश्वास कीजिए। आपके मन में हो सकता है कि ये हमारा हित नहीं चाहते, ये आपकी अपनी सोच है, अपनी दृष्टि है, और इसका कारण है, आपके पास भी बड़े वैलिड कारण है, यानी कि आप फालतू के सोच रहे हैं। उसका कारण ये है मित्रों कि आपका हित किसमें है, शायद इसको समझने में आपके पेरेंट्स को चूक हो जाती है, वो उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन चाहते वो हित ही है। उनको लगता है कि हम जिस तरीके से चाह रहे हैं उसी से उनका हित सधेगा, और उनके पास तरीका क्या है, उनके पास तरीका अपने समय का तरीका है जिससे आज आप 30 साल आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने हित के लिए जो जो चीजें की, लगता है कि अगर हम अपने बच्चों के हित के लिए वही वही चीजें करें तो उनका हित सध जाएगा। वहां उनसे जो चूक हो रही है वो ये होती है कि उनका जो हित था, वो जो समय था, वो 25 साल 30 साल पुराना था, उस समय सारी चीजें बिल्कुल अलग थी, और अभी के पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में जो फासला आया है, टेक्नोलॉजी ने जो फासला कर दिया है वो तो बहुत ही जबरदस्त हो चुका है, वो जो खाई है ना वो बहुत बहुत बढ़ चुकी है। दृष्टि खाई, मतलब खाई का मतलब संबंधों की खाई मैं नहीं कह रहा हूं, दृष्टिबोध की जो खाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो जो चाहते तो आपका हित ही है, लेकिन वो जो चाह रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे हैं, वो आपको सूट नहीं करता, वो मॉडर्न टाइम के हिसाब से नहीं होता है, और ऐसे में आपको सीधे सीधे ये लगने लगता है कि नहीं नहीं ये हमारा हित नहीं चाहते हैं, ये अपना अपना सोचते हैं, अपना हित चाह रहे हैं। मित्रों, ये मुझे लगता है कि हमारी अभी की जो पीढ़ी है उसका जो द्वंद है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का, उसका शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो यदि जो बच्चे हैं ये सोच लें कि नहीं, कम से कम ये चलिए मान लेता हूं कि हितैषी तो नहीं है, सब मान लीजिए चलिए एक बार बुरी से बुरी स्थिति में, लेकिन ये मत आप कहिए कि ये आपके विरोधी हैं, ये आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, आपका हित नहीं चाहते हैं, ये तो आपको नहीं ही कहना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं होगा। ये कम से कम मैं, मतलब आप मेरी इस बात पर यकीन कर सकते हैं। इससे क्या होगा यदि आप इस बात पर ही केवल भरोसा कर ले कि चलिए हमारे हितैषी नहीं है तो कम से कम विरोधी तो नहीं है, बुरा तो नहीं ही चाह रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा मित्रों कि आपके अंदर उनके प्रति जो दृष्टि है, जो अभी तक लगातार एक निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, वो कम से कम निगेटिव डायरेक्शन में बढ़नी बंद हो जाएगी, वो जहां तक है वहीं तक रुक जाएगी, और रुकने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो रिवर्स होने लगेगी, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगेगी। क्योंकि देखिए, जैसा आप सोच लेंगे चीजें, आपके जो विचार हैं उसी दिशा की यात्रा करेंगे। अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो आपके विचारों की दिशा पॉजिटिव हो जाएगी, अगर आप निगेटिव तरीके से सोचेंगे तो आपके विचारों की दिशा निगेटिव हो जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि चलिए वो हितैषी है, बस मेरा अनुरोध है कि आप ये सोच लीजिए कि आपके वो विरोधी नहीं है। आप इसी का प्रभाव देखेंगे कि कितना पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा ही वक्त ले ले, 2-4-6 महीने ले ले, साल भर ले ले, लेकिन होगा अंततः इसका जो परिणाम वो सकारात्मक ही होगा। ये आप इस पर विश्वास करके चल सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आप लोगों को एक उपाय, कह लीजिए एक तत्व दिया है, एक फार्मूला दिया है, सूत्र दिया है, मंत्र दिया है, जो भी आप कहें। अगर किसी के अपने पेरेंट्स के साथ संबंध बेहतर नहीं है तो इसे करके देखें। हाँ मित्रों, एक चीज जरूर होती है कि समय के साथ मूल्य बदल जाते हैं, और हर व्यक्ति अपने मूल्य का एक तरीके से कहीं ना कहीं गुलाम हो जाता है। तो ये पेरेंट्स के लिए चुनौती है, ये पेरेंट्स से भी मैं ये अपील करूंगा, बात ये करूंगा कि वो अपने दिमाग को खुला रखें, अपने ही युग को अब 25-30 साल के बाद के युग पर लादने की कोशिश न करें। अपने समय में उन्होंने भी अपने ऊपर अपने 25-30 साल पुराने युग को लदने नहीं दिया था। अगर वो अपने समय को याद करेंगे तो उन्हें याद आएगा कि उनके भी कॉन्फ्लिक्ट अपने पेरेंट्स के साथ होते थे। ये बात अलग है कि वो मुखर नहीं हो पाते थे, वो समय अलग तरीके का था, एक संयुक्त परिवार की प्रणाली थी, बड़ों के प्रति एक अलग किस्म के सम्मान का भाव होता था, तो वो बोल नहीं पाते थे जैसे कि आज के बच्चे बोल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बोलना कोई बुरी बात नहीं है, किस तरीके से बोला जा रहा है वो एक अलग मुद्दा होता है। कम से कम बच्चे अगर बोल देते हैं, कह देते हैं, तो वो अपने बात को अंदर से निकाल के बाहर रखते तो है, पता तो चल जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे बच्चे हमसे ही नहीं बोलेंगे तो फिर किससे बोलेंगे बेचारे, कहां जाएंगे? तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि हाँ बोलो, चाहे वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, उन्हें बोलने का अधिकार देना चाहिए, बोलने का अवसर देना चाहिए। और अगर उन्हें उनकी बातों में कुछ गलती नजर आ रही है तो शांति के साथ, उत्तेजित होकर नहीं, समझाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें खुद इस बात को समझना होगा कि अभी तो ये अबोध है, मैच्योर हुआ नहीं है, मैच्योरिटी के स्टेजेस से गुजर रहा है, तो इसकी जितनी समझ है वो अपनी समझ के हिसाब से अपनी बात रख रहा है। लेकिन आपकी समझ तो बहुत बड़ी है, आपके आपने तो जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं, तो आप वहां थोड़ा सा धैर्य रख करके, संतुलन रख करके, और फिर अपनी बात समझाएं। हो सकता है कि उसकी समझ में ना आए, लेकिन आप अपना धैर्य मत खोइए, समझाने की कोशिश कीजिए, वो समझेंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे, बस इतना ही है। तो मित्रों, फासला जो है ना वो समय का है, लेकिन मान करके चलिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, और पेरेंट्स को भी ये मान करके चलना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे उत्तराधिकारी हैं, ये हमारे ये भी उतने ही हितैषी हैं। आपके बच्चे भी आपके विरोधी नहीं हैं। ये जो विरोध दिखाई दे रहा है ये बहुत ही टेम्परेरी है, और केवल वैल्यू का विरोध है, भावनाओं का विरोध नहीं है, हितों का विरोध नहीं है, केवल मूल्यों का विरोध है। बस जिस दिन ये तथ्य, ये तर्क समझ में आ गया, आप देखेंगे कि चीजें पैचअप होने लगेंगी। दोनों की जो यात्राएं हैं, पेरेंट्स की और बच्चों की यात्राएं, दोनों के मुंह एक दूसरे के आमने सामने वाली यात्रा हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे के गले मिलने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। बहुत से आज ईमेल आए हैं, और ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अजय वीर सिंह का मथुरा से ईमेल है, जो उन्होंने लिखा है कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में लोगों को बहुत बताते हैं और लोग उससे बड़े खुश होते हैं। तो अजय वीर, इसके लिए पर्सनली मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कुछ मित्रों के मैं नाम ले रहा हूं दोस्तों, जिन्होंने मेल लिखे, उन्हीं में से संगीता चौधरी जयपुर, विवेक चंडीगढ़, अभिनव शशांक मिश्रा पटना, सुमित यादव कालपी उत्तर प्रदेश, अभिषेक त्रिपाठी न्यू दिल्ली, पंकज गुप्ता, सिराज जाफरी नोएडा, चांदनी इंदौर, दीपा, कीर्ति गुप्ता इलाहाबाद, साहिल कृष्ण जम्मू एंड कश्मीर, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़, किशन मेवाड़ा पालिताना गुजरात, सुरेंद्र कुमार, निखिल गौतम कोटा राजस्थान, दिनेश सिंह चौहान अजमेर राजस्थान, कैलाश चंद्र जोशी और राहुल सोनी, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही मैं अमित को भी ये सूचित करना चाहूंगा कि अमित, मेरे पास बहुत आपके मित्रों के मेल आए हैं जो आपके बैचमेट रहे होंगे या एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं, एकेडमी के श्रोता, डेली ऑडियो गाइडेंस के श्रोता रहे हैं, जिन्होंने आपके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भरोसा दिलाया है आपको कि अमित, आप अपने आप को बिल्कुल अकेला न समझें, हम सब आपके साथ हैं। इस बात के लिए मैं उन सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आभार क्या, सच पूछे तो सराहना करता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया और अमित को भले ही डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से ही सही संवेदना व्यक्त, अमित के प्रति संवेदना व्यक्त की। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।